भोली सच्चिदानंद घन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, जगज्जननी अम्बे माता की, सद्गुरुदेव भगवान की। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्म स्वरूप भक्तवृंद परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय आनंद परमानंद के ये क्षण नित्य प्रति की सत्संग सुधा वर्षा स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम का सुंदर प्रांगण भवन महापुरुषों के तप पुरुषार्थ का ये साक्षात जो स्वरूप नित्य प्रति के सत्संग के रूप में हमको आपको जो प्राप्त हुआ है और किसी न किसी शास्त्र किसी न किसी महापुरुष के माध्यम से हम आप इसका नित्य प्रति आनंद लेते हैं, उसी कड़ी में श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध भगवान की बाल चपल लीलाएं साधारण सी लीलाएं लेकिन असाधारण तत्व को अपने अंदर ग्रहण किए हुए भगवान की ये सुंदर लीलाएं जिनका हम लोग पिछले लगभग एक मास से चिंतन कर रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई भी ज्ञान विज्ञान लौकिक अलौकिक कोई भी चीज छोड़ी नहीं गई है। हर चीज को भगवान ने अपनी लीलाओं के माध्यम से बड़े सरलतम रूप में समझाने का प्रयत्न किया, क्योंकि ये तो आप लोग भी मानते हैं, रास्ता कौन सा अच्छा होता है, जो सरल हो वो या जो कठिन हो वो? सरल रास्ता चाहिए कि नहीं चाहिए, या कठिन वाला चाहिए? सरल वाला रास्ता चाहिए। तो सरल वाला रास्ता जो हमारी चाह है वही भगवान ने यहां पर चुना। साधारण सी लीलाएं भगवान जो है समझाने का प्रयत्न करते हैं कि किस प्रकार से पूर्ण रूपेण समझने का प्रयत्न करें कि जो हमारे कर्म हैं पहले तो कर्म रूपी नदी प्राप्त पार हो और तब हम उस गांव में पहुंचें और उस गांव में पहुंचने के बाद फिर वहां के साधन का उपयोग करके तब आपका जो लक्ष्य है ना, जिसको हम परम ब्रह्म कहें या साधारण भाषा में जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया था प्रारंभ में, थोड़ी सी इसकी को कम करना राजू, तो कि किस प्रकार से एक साधारण व्यक्ति नदी के इस पार खड़ा है, उस पार के गांव में उसको किसी व्यक्ति के मकान को खोजना है, सबसे पहला काम है उसका नदी पार करना और नाव के द्वारा या सेतु के द्वारा वो नदी को पार करता है, उसके पश्चात वो ग्राम में पहुंचता है और उस गांव में कोई ना कोई साधन ढूंढकर तब उस ग्राम के उस घर में पहुंचता है। तो उसी प्रकार से तीन चीजें हैं सनातन धर्म में, सबसे पहला है कर्म और उसके बाद है उपासना और तत्पश्चात अंत में आता है ज्ञान, है ना। जो क्रम आप लोग निर्धारित करते हैं संसार के हर जितने भी कर्म हैं संसार में सब में आप लोग यही करते हैं। आप देखो जिसको कन्या का विवाह करना होता है तो महाराज कन्या होते ही उसी दिन से वो धन को जोड़ना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है उस विवाह के लिए कि कन्या इसका विवाह करना, सामग्रियों को जुटाता है जी। ये तो हो गया कर्म, उसके बाद हो गया उपासना, यानी जब विवाह का समय आया तो महाराज संपूर्ण साज सज्जा सजाई गई जो कुछ भी रचा गया है और तत्पश्चात अंत में नंबर आता विवाह का। और विवाह होने में कितनी देर लगती है, क्यों भाई विवाह कितनी देर में हो जाता, लेकिन उस महाराज उस सात चक्कर के लिए जो है कब से प्रारंभ हुए, देखो जन्म से ही, जिस दिन से बेटी ने घर में जन्म लिया उसी दिन से माता चिंता करने लगती कि नहीं, उसी दिन से महाराज कुछ ना कुछ जोड़ना प्रारंभ कर देती। इसीलिए हमारे यहां वेदों में 80% क्या है, कर्म कांड है ना, क्योंकि हमारा सारा जीवन अंत तक है ना, अंत तक आपका जो है ये साथ छोड़ने वाले नहीं है। खाना पीना पहनना ओढ़ना धोना रोना जो भी है ये सब आपके संग रहने ही वाले हैं महाराज। और उसके बाद है उपासना है ना, क्योंकि सत्य संकल्पित आपका मन कैसा होना चाहिए है? आप लोग रुद्री भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं तो उसमें बोलते नहीं, क्या बोलते हैं, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन क्या हो जाए, शिव संकल्प यानी कल्याणकारी संकल्प वाला हो, यानी हम अपना क्या चाहें, कल्याण, ये कहलाती उपासना। उपासना हमारा क्या करती है, कल्याण करती है ना, हम हमको कल्याण के रास्ते पर ले जाती। और तब ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो बहुत थोड़ा सा समय चाहिए, उसके लिए कोई लंबा चौड़ा विधान नहीं है कि आपको ब्रह्म को समझना है। ब्रह्म तो समझा समझाया है, ब्रह्म को नहीं समझना है महाराज, जो समझना है वो सब कर्मों की गति और उपासना। अगर ये आपके समझ में आ गए तो ज्ञान के लिए कोई प्रयत्न प्रयास नहीं है, वो तो महाराज खुली किताब है, जब प्राप्त होगा तो महाराज एक क्षण। और शास्त्र तो महाराज कितना कहते हैं, निमेश, कितना समय लगता है ज्ञान प्राप्ति में, अपना उद्घाटन स्वरूप की प्राप्ति के लिए कितना समय चाहिए, एक निमेश यानी पलक गिरने में जितना समय लगता है उससे भी कम समय में आत्म साक्षात्कार हो जाता है। जरा सोचो, इतने से समय के लिए, देखो आप बिजली, जितने भी उदाहरण हैं संसार में आपको दिखाई दे रहे हैं, बिजली चमकती कितनी देर के लिए है, उसका कोई काल निर्धारण कर सकते हैं आप है? कितनी क्षणिक रूप से महाराज चमक कर गायब हो जाती, लेकिन उस क्षणिक बिजली की चमक के लिए कितना वातावरण तैयार होता है, चारों तरफ से महाराज हवाएं आएंगी, हवाओं के बाद वो जो जल है वो बादलों का गहन रूप लेगा और फिर इतनी सारी चीजें मिलकर एक सेकंड की बिजली को चमकाती। तो उसी प्रकार से ये ज्ञान है जिसको हम लोग प्राप्त करने के लिए यहां पर सत्संग करते हैं नित्य प्रति। तो इसलिए हमारे शास्त्र जो यहां समझाना चाहते हैं और भगवान ने जो गीता में एक एक शब्द जो भी कहा है उसी को ही यहां पर लीलाओं के माध्यम से समझाने की भगवान ने चेष्टा की है। सुनिचैव सुपाकेचा पंडिता समदर्शिना है, भगवान कहते हैं ना गीता में, तो वही यहां पर भगवान कह रहे हैं कि जो कुछ भी हम जो है भोग लगाएं, ऐसा नहीं है कि हम गोवर्धन के सामने, आपने देखा होगा ना 56 व्यंजन बना के रख दें, भगवान ने कहा ऐसा नहीं, गोवर्धन तो को जब भोग लगेगा तब लगेगा, लेकिन उसके पहले हवन हो, हवन होने के बाद जितने भी चांडाल हैं, पतित हैं या जितने भी जीव हैं, जब ये सब तृप्त हो जाएं, गायों को चारा खिला दिया जाए और फिर गिरिराज को भोग लगाया जाए, है ना, उल्टा क्रम है महाराज, हम लोग उल्टी चाल चलते हैं, है ना। जैसा कि हमारे यहाँ बहुत से लोग संशय करते हैं महाराज कि हमारे यहाँ भोलेनाथ को दूध चढ़ाना चाहिए, भोलेनाथ ने नहीं कहा मेरे ऊपर दूध चढ़ाओ, ये तो हमारी आपकी अपनी कल्पना है। अगर आपको चढ़ाने का ही शौक है भगवान को तो भगवान के सामने जाकर दूध को रख दो, भगवान का भोग लग गया उसके बाद किसी को पिला दो, वो ज्यादा बढ़िया है या नाली में बहाना ज्यादा बढ़िया है। या तो आप जो है ये बताओ कि हम जो है दूध बना सकते हैं, बोलो यहां बैठा हुआ कोई व्यक्ति बना सकता है, दुग्ध का निर्माण कर सकते हो घर में, यहां प्रकृति से बना बनाया मिला, उसका केवल हम दुरुपयोग कर सकते हैं। इतना बड़ा पाप करने के बाद हम अपने आप को पुण्यात्मा मानते हैं, सबसे बड़ी गलती तो ये है, और इसको हम उपासना समझ लेते हैं। और उसके बाद जो है हम पंडितों से, ज्योतिषियों से, महात्माओं से जाके पूछते हैं, महाराज हमने कोई पाप तो किया नहीं, पुण्य ही किया, ये हमको क्यों भोगना पड़ रहा है। इसलिए भोगना पड़ रहा क्योंकि भगवान ने एक एक चीज का जो है जिसका मूल्य निर्धारित किया। कर्म में संसार में महाराज जरा सोचो आप हैं कितना, जहां पर पानी नहीं है जाके देखो, जाके एक गिलास पानी के लिए भी वो लोग क्या हैं, पागलों की तरह महाराज भागने लगते हैं। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए महाराज, है ना, एक बार जो है हम लोग तो पहाड़ों में घूमने वाले जंगली लोग हैं, तो एक बार जो है बद्रीनाथ के रास्ते में पदयात्रा कर रहा था मैं, तो महात्माओं के पास जैसा आपको बताया था ना, पहले जो है पीतल के कमंडल होते थे, नारियल के, लौकी के हैं, अब प्लास्टिक का कमंडल है। तो ऐसे ही जल हमेशा संग में रहना चाहिए, क्योंकि जल की कब किसको क्या जरूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं। तो महाराज मैं भी जल लेके जो है पदयात्रा कर रहा था, तो रास्ते में एक व्यक्ति जो है कोई गृहस्थ था, और वो महाराज बिना पानी के, क्योंकि अनजान है ना, हम लोग समझते नहीं है, बस चल देते हैं हर चीज, बिना कुछ सोचे समझे यात्रा प्रारंभ कर दी, चलते चलते थक गए, और इसका परिणाम ये हुआ कि महाराज प्यास और प्यास के लिए कोई इंतजाम नहीं वहां पर। तो महाराज वो हाय हाय कर रहा था रास्ते में, मैं रुका, भाई क्या हो गया? बोले महाराज प्यास लगी पानी, तो पानी तो था ही महाराज, उसको ज्यों ही पानी पिलाया, आंखों में क्या आ गई, चमक आ गई कि नहीं आ गई? आंखों में चमक आ गई, महाराज उठ के खड़े हो गए, बोले आप नारायण तो नहीं हो? क्योंकि मैं इतनी देर से भगवान से कह रहा था कि मुझे कोई पानी पिला दे, और आप साक्षात भगवान की तरह प्रकट हो गए, है ना? तो देखो एक गिलास पानी जो है दूसरे व्यक्ति को क्या बना देता है, भगवान बना दिया कि नहीं बना दिया? हाँ ये है। तो महाराज ये इस संसार में आपको जब जरूरत पड़ती है उस समय अनुभव होता है कि हाँ किस चीज की क्या कीमत है। इसलिए भगवान कहते हैं अपने गोप वृंदों से कि आप जो इस यज्ञ को करके, यानी इंद्र को प्रसन्न करने की, जिसको आपने देखा नहीं, जिसको आप जानते नहीं, जिसको आप पहचानते नहीं, उसके लिए सारा ड्रामा, और यहां पर जो आपके समक्ष हैं उनके लिए आपके पास कुछ नहीं। इसलिए भगवान ने कहा कि इन सबको पहले तृप्त किया जाए, है ना? क्योंकि राजा बलि को देखा नहीं आपने, राजा बलि जो है भगवान समक्ष खड़े हो गए आकर, जो है बावन भगवान बोले बिना मुझे तृप्त किए तुम यज्ञ का संकल्प कैसे कर सकते? जो हमारे यहां सनातन नियम है, हमारे यहां ये नियम नहीं है कि राजा जो है प्रजा को भूखा प्यासा रखकर बड़े बड़े यज्ञ करे। हमारे यहां यज्ञ का संकल्प राजा तभी कर सकता था जब उसकी प्रजा पूर्णतया तृप्त हो। अगर प्रजा भूखी प्यासी है, ऐसे राजा को यज्ञ का कोई अधिकार नहीं था, है ना? जो आजकल का नियम है, है ना? हम लोग जो है दूसरे को भूखा प्यासा रखकर हम सोचते हैं भगवान भगवान नहीं प्रसन्न होंगे, तुम्हारे अंदर विराजमान परमेश्वर प्रसन्न होगा। क्योंकि तुम्हारे अंदर का परमेश्वर जब तक प्रसन्न नहीं होगा, बाहर का भगवान भी प्रसन्न होने वाला नहीं है। तो भगवान ने महाराज इस प्रकार से उन बिना पढ़े लिखे ग्वाल वालों को, महाराज गोप वृंदों को, ये जो विज्ञान है जिसको हम लोग पर्यावरण कहते हैं, पर्यावरण चक्र जिसको कहते हैं, या साइकिल ऑफ नेचर जिसको कहा जाता है साइंस की भाषा में, है ना? पहले देखो अब वही जो है विज्ञान हर चीज की रक्षा करने में लगा, है ना? हमारे यहां था नहीं ये सब, लेकिन उन्होंने ही हमको प्रकृति को नष्ट करना सिखाया। अब वही लोग जो है हमको प्रकृति की क्या सिखा रहे हैं? अरे भाई आपके यहां शास्त्रों में वृक्षारोपण आज से है या हजारों साल से? क्यों भाई? कि अंग्रेजों ने सिखाया? अंग्रेजों ने तो महाराज पता क्या सिखाया, हमारे यहां जो है गंगोत्री में जब देखा महाराज, एक अंग्रेज ऑफिसर था, वो गया गंगोत्री में, उसने बड़े बड़े चीड़ के पेड़, देवदार के पेड़ देखे, बोले वाह ये तो बहुत बढ़िया है यहां तो भारत में, है ना? बोले आपको तो ट्रांसपोर्टेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, आपके यहां तो ऐसे ही ट्रांसपोर्ट बना हुआ है गंगा नदी। और उसने क्या किया, सारे पेड़ काट काट के महाराज सब गंगा में डाल डाल के वो सब यहां हरिद्वार में जो है वो सारी लकड़ी इकट्ठी करनी शुरू कर दी, सारे जंगल नष्ट कर दिए। हम लोगों ने नहीं किए थे, किसने किए? अंग्रेजों ने महाराज, पहले पेड़ नष्ट कर दिए। अब वही इंग्लैंड और अमेरिका वाले हमको क्या सिखा रहे हैं, पेड़ लगाओ। तो हम क्या हुए, बुद्धिमान या मूर्ख? हैं? मूर्ख नहीं, महामूर्ख। क्यों भाई? जब हम अपने ऋषियों मनीषियों को भूलेंगे तो यही होगा कि नहीं होगा, है ना? पहले तो हमने उनको ये करने की जो है छूट दी, और उसके बाद जब उन्होंने कर लिया वो हमको सिखा रहे हैं, तो महाराज अब हम उनसे सर्टिफिकेट लेंगे कि वृक्षारोपण कैसे किया जाता है, जहां पर पीपल के वृक्ष को महाराज भगवान माना जाता है। ध्यान देना ये सनातन धर्म, पीपल का वृक्ष आपको क्या देता है जरा बताओ, क्या देता है? सबसे खराब पेड़ है पीपल का पेड़, ध्यान देना, ये रट लिया ना आपने ऑक्सीजन। अगर किसी को बीमार करना है तो पीपल के पेड़ के नीचे लिटा दो, 3 दिन में बीमार हो जाएगा। कुछ भी नहीं है महाराज उसमें, ना तो पीपल के पेड़ की लकड़ी किसी काम आती है आपका, ना फर्नीचर बन सकता है, ध्यान देना, सनातन धर्म को समझ लो महाराज। ना तो उसकी लकड़ी काम आती है, ना उसके पत्ते, ज्यादा पत्ते, इतना गर्म पत्ता होता है पीपल का, अगर किसी को खिला दो, जब गाय ब्याती है तब उसको पीपल का पत्ता खिलाया जाता है, तो महाराज उसका पत्ता किसी के काम नहीं आता, जानवर के ज्यादा खा नहीं सकता, केवल उसके जो फल हैं वो पक्षी थोड़ा बहुत खाते हैं, बाकी किसी काम नहीं आता, अलावा नुकसान के कोई दूसरा काम नहीं है पीपल का। लेकिन ऐसे पीपल के वृक्ष में हमारे यहां 33 कोटि देवी देवताओं का क्या माना गया, ये सनातन धर्म है महाराज। हर चीज प्रकृति का चक्र है कि नहीं है? अरे भाई, आपके शरीर में सारी चीजें अच्छी लगी हैं या खराब भी लगी हैं? हैं? जितनी अच्छी लगी हैं उतनी ही खराब भी हैं कि नहीं है? शरीर में सब चीजें हैं आपके शरीर में। उसी प्रकार से महाराज हमने जो रट लिया ना ऑक्सीजन देता, कोई ना ऑक्सीजन नहीं देता महाराज पीपल का वृक्ष। सबसे बढ़िया वृक्ष अगर निवास करने के लिए माना जाता है तो नीम का पेड़, कौन सा? हाँ, नीम के पेड़ के नीचे यदि आप लेटे हैं रोज, तो महाराज आपके शरीर की सारी बीमारियां अपने आप क्या हो जाएंगी, अंतर ध्यान हो जाएंगी। और अगर स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति को पीपल के नीचे 1 महीने लिटा दो, उसके अंदर धीरे धीरे सारी बीमारियां प्रवेश कर जाएंगी। जरा सोचो, उन ऋषियों ने ऐसा क्या सोचा महाराज जो हमारे पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवी देवताओं का क्या बना दिया, निवास स्थान बना दिया महाराज। इसलिए बना दिया क्योंकि हमारा सनातन धर्म निष्कामता पर विश्वास करता है। किस पे? हाँ, निष्काम, हर जगह सकामता नहीं, नहीं तो हमारे ऋषि महाराज आम के वृक्ष में 33 कोटि देवी देवता का निवास बनाते या पीपल के वृक्ष में? अरे भाई, आपको अगर छूट दी जाए तो किसको बनाओगे, हैं? आम के वृक्ष को या पीपल के वृक्ष को? सीधी सी बात है, क्यों भाई? अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमको 2 पेड़ दे दिए जाएं, एक में एप्पल यानी सेब लगता हो और दूसरा पीपल का हो, दोनों में से कौन सा पसंद करोगे घर में लगाना, हैं? इसलिए ऋषियों ने महाराज पीपल के वृक्ष को क्या दिया, महत्व दिया, क्योंकि मनुष्य का जो साधारण अविवेकी स्वरूप है वो हमेशा स्वार्थ ही ढूंढता है, हम निस्वार्थ नहीं होते। लेकिन उस पीपल के वृक्ष में महाराज 33 कोटि देवी देवता निवास कर देने के कारण हम लोगों ने महाराज उस वृक्ष को भी लगाना क्या किया, क्योंकि वो भी प्रकृति का एक क्या है, चक्र है महाराज, और चक्र में हर चीज अनिवार्य है। जैसे गाय अनिवार्य है वैसे ही सर्प अनिवार्य है ना, सांप का भी वही महत्व है महाराज जैसे गऊ का महत्व है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए भगवान ने यहां पर सब चीजों को, कहते चांडाल को, पतित को, कुत्ते को, हर चीज की आवश्यकता है समाज में, है ना। जब तक ये नहीं होगा तब तक आपका प्राकृतिक चक्र पूरा नहीं होगा, और जब तक प्राकृतिक चक्र पूरा नहीं होगा तब तक आपका जीवन सुखी हो ही नहीं सकता, ध्यान देना। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार से ये जो गोवर्धन यज्ञ हम लोग कहते हैं, भगवान ने जो है इस प्रकार से उन लोगों को समझाया कि इस प्रकार हम लोग खा पीकर सुंदर वस्त्र पहनकर साज सज्जा करके गौ ब्राह्मण अग्नि गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करें, मेरा तो यही मत है, और आप लोगों को यदि रुचे तो महाराज आप मेरी बात को माने, क्योंकि मुझे तो ये मह्यम चा दई तो मखा, मुझे तो ये गोवर्धन यज्ञ ही प्रिय है महाराज। जब भगवान ने इस प्रकार से उन गोप वृंदों को समझाया तो कहते हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित, कालात्मना भगवता शक्र दर्पम जिघांसा प्रोक्तम निशम्य नंदाद्या साध्व ग्रहंत तद्वचः। कहते हैं कालात्मा भगवान जो है इंद्र के घमंड को चूर करना चाहते थे। एक तरफ तो उद्देश्य ये था और दूसरा उद्देश्य था क्योंकि गोकुल को जो है ये यदुवंशी नष्ट कर चुके थे और भगवान नहीं चाहते थे कि वृंदावन को भी इसी प्रकार से ये नष्ट कर दें, है ना। मनुष्य का स्वभाव है हमारा, देखो प्रकृति हमारा कितना साथ देती है। और इतना जो है जिसको हम लोग जड़ समुद्र कहते हैं, जल जो है जड़ माना जाता, लेकिन आपने देखा कि जो है पानी यहां पर समुद्र का जल कहां तक था, है ना। आज से 40 साल 50 वर्ष पूर्व जहां पर समुद्र था वहां आज महाराज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हुई, लेकिन समुद्र ने आपका कहना माना और वो पीछे हट गया। क्यों भाई? किसी म्युनिसिपैलिटी ने आदेश दिया था कि हम यहां बिल्डिंग बनाएंगे, तुम पीछे हट जाओ। देखो समुद्र जो है पीछे हट गया आपकी बिल्डिंग के लिए, उसने रास्ता छोड़ दिया। ये प्रकृति हमारा साथ देती है, लेकिन हम प्रकृति को कभी समझने की चेष्टा नहीं करते। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से वहां पर जो है इंद्र यज्ञ की बजाय गोवर्धन यज्ञ महाराज प्रारंभ हुआ, स्वस्ति वाचन कराया गया और गिरिराज जिनको हम लोग कहते हैं वहां पर हवन यज्ञ हुए और सुंदर सुंदर घास से जो है गऊओं की महाराज सेवा की गई। और उसके बाद ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर और जो कुछ भी उनके पास था उन ग्रामीण जातियों के पास महाराज श्रृंगार करने के लिए पूर्णतया उन्होंने श्रृंगार किया। बैल से जुती हुई गाड़ियां तैयार की गई और महाराज परिक्रमा करनी प्रारंभ की गई। और इसी परिक्रमा में भगवान ने अपनी दूसरी लीला को रचा महाराज। जरा देखो क्या रचा। कृष्णस्त्वन्यतमं रूपं गोप विश्रम्भणं गतः शैलोष्मी ब्रुवन् भूरि बलिमा दद् बृहद् वपुः। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है उन बिना पढ़े लिखे गोप वृंदों के अंदर विश्वास जगाने के लिए, हाँ, भगवान ने क्या किया। कहते हैं एक विशाल रूप से बृहद् वपु, अपने आप को एक विशाल रूप में, क्योंकि वो अपने आप को जैसा चाहे एक से अनेक कर सकता है और अनेक से एक कर सकता है। महाराज उन्होंने विशाल शरीर धारण करके और सामने जो है जो पर्वत खड़ा हुआ था वहां पर ही महाराज उनका एक बड़ा सा मुख प्रकट हुआ उस गिरिराज में। और उस मुख ने महाराज बोल कर कहा कि मैं ही गिरिराज हूं, ऐसा कह के महाराज वो पर्वत बोला। और जो भोग लगाई गई सामग्री थी वो पर्वत जो है उसको खाने लगा। भगवान स्वयं जो है पर्वत में अपने एक रूप को धारण करके भोग लगाई हुई सामग्री को महाराज खाना प्रारंभ कर दिया। और दूसरी तरफ भगवान कैसे खड़े हुए हैं, नटवर बपू कैसे खड़े हैं, ध्यान कीजिए। आपको सुनाया था ना नटवर बपू का स्वरूप, कि भगवान छोटी सी जो है धोती, उसके ऊपर एक छोटी सी पीतांबरी, मोर का मुकुट है और बंसरी, एक तरफ बंसरी एक तरफ सिंगी, और भगवान ऐसे सात वर्ष के, कितने बड़े हैं, सप्तवर्षीय भगवान, छोटे छोटे गोप वृंद और उनके संग संग बड़े गोप वृंद सब के सब महाराज जो है वहां पर खड़े हुए हैं। और एक तरफ गिरिराज में भगवान ने अपने बृहद रूप को धारण करके बड़ा सा मुख खोला हुआ है और भोग लगाई हुई सामग्री को वो पर्वत क्या कर रहा है, खा रहा है महाराज। और दूसरी तरफ भगवान ने कहा अरे देखो भगवान प्रकट हो गए, सब लोग हाथ जोड़कर इनको क्या करो, नमस्कार करो महाराज। भगवान कहते हैं तस्मै नमो ब्रजनै सहचक्रेत्मात्मने अहो पश्य शैलेशो रूपीनोनुग्रहं विदधात्। कहते हैं भगवान की उस स्वरूप को ब्रजवासियों को दिखा करके स्वयं अपने ही जो दूसरे स्वरूप से गिरिराज में थे उसको भगवान ने स्वयं प्रणाम किया और गोप वृंदों से भी कहा कि तुम लोग भी गिरिराज को क्या करो, प्रणाम करो, क्योंकि ये साक्षात ईश्वर हैं। कैसा आश्चर्य है कि गिरिराज साक्षात हमको प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं। इसको कहते हैं भय बिन होई न प्रीत। जो हमारे यहां ये जो पत्थरों में, लकड़ी में, काष्ठ में, या जो है जिसको हम लोग धातु कहते हैं, धातुओं की मूर्ति में भगवान की जो कल्पना की जाती है वो इसीलिए की जाती है क्योंकि आपके घर में एक मंदिर तो महाराज जो सबके लिए होता है, हैं? और एक मंदिर जो आप अपने घर में बनाते हो, क्यों बनाते हो घर में मंदिर भाई? आप जो घर में मंदिर बनाते हो किस लिए बनाते हो? हाँ वही बात आ गई ना, हमारे बाप दादा करते चले हैं, हमारे यहां ऐसा होता चला आ रहा है इसलिए हम भी करते हैं। अरे आपका भी कोई भगवान ने दिया है कि नहीं दिया? तो किस लिए रखा? इसलिए बनाया गया वो मंदिर कि हमारे ऊपर नियंत्रण करने वाला कोई होना चाहिए, क्योंकि साक्षात भगवान आपके मंदिर में बैठे हुए हैं और जो आप जो कुछ भी करेंगे वो आपके कर्मों के क्या हैं? साक्षी हैं महाराज। इसलिए आप उनके नियंत्रण में रहेंगे, इसलिए हमारे यहां घर में एक छोटा सा क्या बनाया जाता, हाँ, उस मंदिर की विशेषता ये होती है कि जो बाहर के मंदिर होते हैं, जो बड़े विशाल मंदिर होते हैं, उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, लेकिन घर के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है ना। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि वहां तो हमारा भावना का ही प्राण प्रतिष्ठित परमेश्वर है महाराज, इसलिए जो है वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, वहां तो महाराज अपना नियंत्रक मानने की आवश्यकता है कि आप एक नियंत्रक के है ना, ईशावास्यम इदं सर्वम्। परमेश्वर के स्वरूप की जब आप कल्पना करते हैं तो महाराज आप घर में एक छोटा सा मंदिर बनाते हैं, तो भगवान के समक्ष जब साक्षी मानकर आप जो कुछ भी करोगे वो कर्म शुद्ध होंगे या अशुद्ध होंगे? सीधी खुली किताब है महाराज। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो साक्षात गिरिराज प्रकट होकर हमको तुमको क्या दे रहे हैं? दर्शन दे रहे हैं, इसलिए सावधान हो जाओ। कहते हैं कि जो भी वनवासी है ना, क्योंकि भगवान अपने आप को क्या मानते हैं, एषो वजानतो मर्तान काम रूपी वनोकषः हन्ति हस्मै नमस्यामा शर्मणे आत्मनो गवाम। कहते हैं ये जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर सकते हैं, इसलिए सावधान हो जाओ। और वनवासी जीव यदि इनका निरादर करेंगे तो ये महाराज चूंकि साक्षात भगवान है इसलिए उनको नष्ट कर देंगे। भगवान देखो समझा रहे हैं, डर जो कहते हैं भय बैठा देना, जैसे वो साधारण सी रखी हुई महाराज 2 रुपए की मूर्ति आपके अंदर भय बन जाती है कि भगवान मुझे देख रहे हैं, है ना। तो आपके कर्म अगर अशुद्ध भी होने लगेंगे तो क्या हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने हमारे यहां घर में क्या बनाया जाता है, मंदिर बनाया जाता है। तो इसलिए महाराज जो है आओ, भगवान कहते हैं अपना और गऊओं का कल्याण करने के लिए हम गिरिराज को क्या करें? बोले महाराज नमस्कार करें। कहते हैं इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से इत्यद्रिगो द्विजमखम वासुदेव प्रणोदिता यथा विदायते गोपा सा कृष्णा ब्रजम ययुः। कहते हैं सारे जितने भी बड़े बड़े गोप और गिरिराज गऊ ब्राह्मण सब ने जो है उनका ब्राह्मणों का गऊओं का विधिपूर्वक पूजन किया और महाराज उसके बाद इस बात को हृदय में धारण करके कि ये साधारण नहीं असाधारण गिरिराज हैं, साक्षात भगवान हैं, ये भय भगवान ने उनके हृदय में बैठा दिया जिससे ये कभी भी इस पर्वत को नष्ट ना करें, क्योंकि अगर ये नष्ट हो गया तो जिस प्रकार से गोकुल को इन्होंने नाश कर दिया था उसी प्रकार से वृंदावन भी नष्ट हो जाएगा और फिर इनके लिए न पीने को पानी होगा और न यहां पर हरियाली यानी जो है गायों के लिए चारा होगा। इसलिए भगवान ने इस प्रकार का जब भय बैठा दिया महाराज और गोवर्धन यज्ञ पूरा हो गया, दूसरी तरफ जब महाराज इंद्र को ये पता चला कि मेरा जो इस प्रकार से एक साधारण से गोप बालक ने, क्योंकि हम लोग जिस प्रकार से परमात्मा को भूल जाते हैं इसी प्रकार से स्वार्थ में निहित इंद्र भी महाराज भगवान को भूल गए और भगवान को समझने में उन्होंने भूल कर दी और इसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने जो है अपने जो है विशाल मेघों को, हमारे यहां जो प्रलयकालिक मेघ माने जाते हैं उनको सामवर्तक मेघ कहा जाता है। गणम सामवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहेश मान्यत। कहते हैं कि जो है आदेश दिया उन्होंने अपने सामवर्तक गण जो मेघ थे कि जाओ ब्रज के ऊपर जाकर ऐसा भयंकर जो है बारिश करो कि उनका धन धान सब कुछ नष्ट हो जाए, क्योंकि एक ही साधारण से कृष्ण ने जो है बाचाला बारिशम, कहते हैं ऐसा कृष्ण भगवान को जो है इंद्र कह रहे हैं कि बकवादी कृष्ण। देखो ये होता अहंकार, हम भगवान को भी फिर कुछ समझते नहीं अपनी बुद्धि के आगे। कहते हैं ये नादान अभिमानी जो बालक है ये मूर्ख होने पर भी अपने आप को चतुर समझ रहा है, इसका जो है मैं पूर्णतया नाश करूंगा। ऐसा इंद्र जो है भगवान कृष्ण के ऊपर कुपित हो गए, और भगवान यही तो चाहते थे, क्योंकि भगवान का किसी के क्रोध करने से कोई भी कुछ बनने बिगड़ने वाला, जो समझने योग्य चीज है, भगवान बिल्कुल भी वहां पर भ्रमित नहीं हुए कि भगवान भ्रमित हो जाएं। इंद्र भ्रमित है महाराज, और भ्रमित इंद्र जो है इस प्रकार से भगवान को ही मृत्यु के घाट पे पहुंचाने के लिए तैयार खड़े हो गए महाराज। और उसके बाद प्रारंभ हुआ, जिस समय नंद जो है पूर्णतया नंदग्राम को डुबाने का आदेश दे दिया, कहते हैं तुम लोग चलो और पीछे से मैं संपूर्ण मरुत गणों के संग, जो 49 मरुत हैं महाराज प्रलय काल के समय प्रकट होने वाले, उनके संग ऐरावत हाथी पर जो है चढ़ाई करने के लिए आता हूं। ऐसा ब्रज के ऊपर कुपित होकर इंद्र ने महाराज मूसलाधार पानी बरसाना प्रारंभ किया। कहते हैं मोटी मोटी धाराएं गिरने लगी और चारों तरफ से महाराज बारिश ने जो है ब्रज को अपने अंदर समेटने की चेष्टा करनी प्रारंभ की। ऐसे लगता था कि सब कुछ अभी नष्ट हो जाएगा, जितने भी ग्वाल बाल गौएं सब के सब महाराज वहां पर पहुंचे और जाकर के भगवान की शरण में कि तुम ही एकमात्र हमारे रक्षक हो, इसलिए हमारी क्या करो, रक्षा करो महाराज, इंद्र के क्रोध से हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा तुम घबराओ मत, क्योंकि मैंने इंद्र के मान को नष्ट करने के लिए जो इंद्र के यज्ञ को बंद किया है, उसी का परिणाम ये है कि वो जो है अपने संपूर्ण वेग से हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो इसलिए तुमको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित इस प्रकार से संपूर्ण ब्रज को जो है समझाकर एकाएक भगवान ने इत्युक्त्वकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलिया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। कहते हैं जिस प्रकार से एक छोटा सा बालक छत्रक यानी जो मशरूम जिसको आप लोग बोलते हैं, जो छत्रक बोला जाता है, सफेद सफेद उगाता है महाराज वर्षा काल में, कहते हैं जैसे एक छोटा सा बालक उसको उखाड़ लेता है, उसी छत्रक की तरह भगवान ने देखते ही देखते गोवर्धन पर्वत को जो है, जिनको भगवान ने स्वयं गोवर्धन नाम दिया, नाम ही उसका रखा गोवर्धन, गौ वंश का वर्धन करने के कारण भगवान ने गिरिराज को क्या नाम दिया, गोवर्धन। तो महाराज उस गोवर्धन को खेल ही खेल में महाराज हस्तेन कृत्वा अपने हाथ में उठा लिया और एक विशाल गड्ढा उसके अंदर तैयार हो गया, विशाल है ना, चूंकि गोवर्धन पर्वत बड़ा विशाल था महाराज, और उसके अंदर जो विशाल गड्ढा तैयार हुआ, संपूर्ण ब्रजवासियों से भगवान ने कहा माताजी पिताजी ब्रजवासियों गौओं सहित आप जो है इस गड्ढे में, ये जो विशाल गड्ढा तैयार हुआ है इसमें शरण ग्रहण करें, आपको तनिक भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे हाथ से ये पर्वत छूटेगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने जो है योग माया के द्वारा इसको साधा हुआ, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपनी योग माया से आप सबकी रक्षा करूंगा। कहते हैं इस प्रकार से भगवान को जो है विशाल गिरिराज को उठाए हुए सारा ब्रज देखता है, आश्चर्यचकित होकर भगवान को देख रहे हैं, और दूसरी तरफ महाराज उस गड्ढे के अंदर शरण लेते चले जा रहे हैं, सारे ब्रजवासी महाराज उसके अंदर पहुंच गए और शरण लेकर के जब वहां पर बिल्कुल अपने आप को जो है अनुभव सुरक्षित करने लगे, सुरक्षित अनुभव करने लगे, तब महाराज 7 दिन तक कहते हैं विशाल जो है बारिश का वहां जो साम्राज्य देखने को मिला, कहते हैं चारों तरफ मेघ ही मेघ, बारिश ही बारिश, जल ही जल, ऐसे लगता था कि धरती में जल के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। कहते हैं 7 दिन तक इंद्र ने अपने कोप की वर्षा की, लेकिन भगवान अपने कार्य से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए महाराज। जब ऐसे 7 दिन तक इंद्र थक गए, तब उन्होंने अपने सब जो है अस्त्रों शस्त्रों को डाल दिया महाराज, हार मान ली और अपनी वर्षा को रोक दिया, मेघों को रोक दिया, मरुत जो उनके 49 मरुत थे सबको वापस भेज दिया महाराज। जब बारिश रुक गई, चारों तरफ का पानी महाराज अपने अपनी जगह पर चला गया, तो वहां पर जो है सबने जो है भगवान को, कोई हृदय से लगा रहा है, कोई भगवान को जो है पूजा कर रहा है, कोई भगवान के चरण स्पर्श कर रहा है, कहते हैं इस प्रकार से सबने भगवान का अभिवादन किया। और दूसरी तरफ जो है उनकी इस अतुलनीय क्षमता का वहां पर गुणगान किया। गोपवृंदों ने या सत्तायनो बाला करेणकेन लीलया कथम विव्रत गिरवरम पुष्करम गजराजडिव। कहते हैं देखो कैसी विचित्र बात है, ये सत्तायनो बाला, 7 वर्ष का ये बालक, सत्तायनो बालक, 7 वर्ष के भगवान, कहते हैं इस 7 वर्ष के बालक ने मारा लीला लीला में यानी खेल खेल में ही इतने बड़े गिरवर को जो है अपने हाथ में उठा लिया। आश्चर्यचकित होकर सब भगवान की जो है पूर्व की हुई लीलाओं का महाराज वहां पर वर्णन करने लगे। और वहां पर पुनः एक बार जो है वसुदेव नंद बाबा ने याद दिलाया कि गर्गाचार्य ने मुझे बताया था कि तुम्हारा ये बालक साधारण नहीं है, असाधारण है, और जैसे जैसे ये कर्म करेगा इसके कर्मों के माध्यम से तुमको इसकी विशेषता पता चलेगी। तो वहां पर बहुत विस्तृत वर्णन किया है। और दूसरी तरफ महाराज जब इस प्रकार से भगवान का सबने जो है वंदन कर लिया, तो महाराज इंद्र को भी भगवान की शरण में आना पड़ा। और इंद्र ने आकर के वहां पर भगवान की बहुत बड़ी स्तुति की है, क्योंकि भगवान जो है इंद्र की आंख को खोलना चाहते थे। जो बंद आंख से वो भगवान को एक साधारण सा नटवर बपू है ना, साधारण से गोप वृंद के रूप में महाराज देख रहा था इंद्र कि ये तो बिल्कुल साधारण सा बालक है महाराज, ये हमारा क्या बिगाड़ेगा है, और इसका ही मैं नाश कर दूंगा। लेकिन जब महाराज देखा कि 7 दिन के मेघ से भी ये विचलित नहीं हुआ, तो महाराज इंद्र को समझने में देर नहीं लगी, क्योंकि मेरी बराबरी अलावा परमेश्वर के कोई दूसरा नहीं कर सकता है महाराज। तो इंद्र ने बड़ी विस्तृत स्तुति की है भगवान के। स्तुति का मतलब ही होता है कि भगवान के विशुद्ध स्वरूप का वर्णन। तो महाराज पूर्णतया भगवान के ऐश्वर्य को समझते हुए अपने ऐश्वर्य मद को, कि प्रभु मैं अपने ऐश्वर्य मद के मद में जो अंधा हो रहा था, मैं अपने अपराध को आपसे क्षमा कराना चाहता हूं और मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूं, क्योंकि आपकी शक्ति आपके प्रभाव के बारे में मैं बिल्कुल अनजान था और मैं आपको बिल्कुल साधारण सा एक बालक समझ रहा था, इसलिए प्रभु आप मेरे अपराध को क्षमा करें। इस प्रकार से जब इंद्र के मद, जिसको कहते हैं ऐश्वर्य का मद, नष्ट हो गया महाराज, और भगवान से उसने अपने अपराध को क्षमा करा लिया, क्योंकि भगवान तो महाराज कृपा के सागर हैं, और उन्होंने इंद्र को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया महाराज। और भगवान ने कहा कि इंद्र है मया ते कारि मघवन मघभंगो अनुग्रहणता मदनुस्मृते नित्यम मत्तस्तेन्द्र श्रिया भृशम। कहते हैं हे इंद्र, तुम जो है ऐश्वर्य धन संपत्ति के मद से मतवाले हो रहे थे। ध्यान देना, जो हमारे संग होता है, जो हम लोग करते हैं महाराज, ऐश्वर्य धन संपत्ति का मद जब हमारे ऊपर चढ़ जाता है, तो हम भगवान को भी भगवान नहीं समझते हैं। तो यही स्थिति महाराज इंद्र की यहां दर्शाई गई है, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करके तुम्हारा यज्ञ भंग किया है, इसलिए अब तुम नित्य निरंतर मेरा जो है क्या करो, स्मरण करो। मदन स्मृतये नित्यम, तुम नित्य निरंतर मेरा स्मरण करो, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा कर्तव्य है कि जो भी ऐश्वर्य धन संपत्ति के मद से अंधा हो जाता है, वो ये नहीं देख पाता कि मैं काल स्वरूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर सबका नियंत्रण करता हूं। जब उसको ये दिखाई नहीं देता, तो मैं उसके ऊपर अनुग्रह कर उसको ऐश्वर्य से भ्रष्ट कर देता हूं। तम भ्रंशयामि संपद्यभ्यो, संपत्ति से महाराज भ्रंश कर देता हूं। भगवान कहते हैं ये मेरी उसके ऊपर कृपा है, क्योंकि ये मद जो है हमको सत्य का दर्शन नहीं करने देता। तो भगवान कहते हैं कि अपनी कृपा के द्वारा उसके इस मद को दूर करने के लिए तम भ्रंशयामि संपत् भयो, कहते हैं उसकी संपत्ति का मैं विनाश करता हूं, ऐश्वर्य का विनाश करता हूं, जिसका परिणाम ये होता है कि वो मुझ सत्य स्वरूप परमेश्वर का दर्शन करने लगता है। ये भगवान का जो है गोवर्धन यज्ञ करने का कारण है महाराज। नंबर एक तो महाराज पर्यावरण, नंबर दो ऐश्वर्य मद को समाप्त करने का यहां रूप दिखाया गया, क्योंकि ऐश्वर्य मद से जब हम पूर्णतया ऐश्वर्य मद के प्रभाव में आ जाते हैं और सत्य से दूर हो जाते हैं महाराज, तो हमको परमेश्वर जो है दिखाई देते हुए भी दिखाई नहीं देता है। तो उस समय भगवान जो है अपना ये कठोर दंड उठाते हैं, जिसको काल दंड पाणिम चपश्यति कहते हैं, ये देख नहीं पाता मनुष्य कि मेरे हाथ में ही सब कुछ है, तब मैं महाराज इस प्रकार का कार्य करता हूं। जब इस प्रकार से भगवान ने इंद्र को समझाया तो वहां पर माता कामधेनु प्रकट हुई और उन्होंने जो है भगवान के सुंदर स्वरूप का जो है वहां पर वंदना की। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयम अच्युत, हे अच्युत, हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हे महायोगी, हे विश्वेश्वर, विश्व के परम कारण हे अच्युत, संपूर्ण विश्व के स्वामी आपको जो है अपने रक्षक के रूप में प्राप्त करके हम अपने आप को सनाथा उस माता भगवती कामधेव कामधेनु जिनको आप सुरभि के नाम से जानते हैं महाराज, तो माता भगवती जो है कामधेनु ने भगवान की जो है स्तुति की और उन्होंने जो है प्रार्थना की कि प्रभु आपने जो हमारी रक्षा की है इंद्र के इस मेघ से, इसलिए हम आपका अभिषेक करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित एवं कृष्णमुपामंत्रे सुरभि पयसात्मना जलैराकाश गंगाया ऐरावत करोद्घृत ही। कहते हैं जब इस प्रकार से माता कामधेनु ने भगवान की स्तुति की, भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कह के महाराज कामधेनु ने अपने दुग्ध के द्वारा हैं, और उसके बाद देवराज ने जो है अपने ऐरावत हाथी के जो है सूंड में भरकर लाया हुआ जलैर आकाश गंगाया आकाश गंगा के जल से, और सुरभि ने पयसात्मना अपने दुग्ध के द्वारा महाराज क्या किया जो है भगवान का अभिषेक किया महाराज। तो इस प्रकार से भगवान को अभिषेक करने के बाद जो है उन्होंने क्या किया महाराज, भगवान को एक नाम दिया इंद्रम सुरर्षि भी साकम नोदितो देवमात्र भी अभ्यचिषतम दर्शाहम गोविंद इति चाभ्यदात। कहते हैं गोविंद इति चाभ्यदात, उस समय भगवान को जो है इंद्र ने गोविंद कह के पुकारा, भगवान का एक नाम पड़ा गोविंद। किसके कारण? गायों के इंद्र होने के कारण इंद्र ने स्वयं भगवान को यहां पर गोविंद कहकर पुकारा है, क्योंकि भगवान ने जो है गायों की उस समय गोवर्धन पर्वत उठाकर जल से क्या की रक्षा की थी, इसलिए महाराज जो है स्वयं इंद्र के द्वारा दिया गया ये नाम है भगवान गोविंद कहलाए। और भगवान ने जो है हमको आपको ये संदेश दिया इस लीला के माध्यम से, नंबर एक कि हमारा आपका जो कर्म है वो पूर्णतया निष्काम होना चाहिए, और निष्कामता के संग संग सर्वभूत प्राणियों के लिए होना चाहिए, है ना, क्योंकि संपूर्ण भूत प्राणियों की रक्षा यदि हम नहीं करेंगे तो ये प्रकृति चक्र क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और प्रकृति चक्र जब नष्ट हो जाएगा तो आपका जीवन क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा, और अस्त व्यस्त जीवन, अरे भाई एक बात बताओ, जब आप घूमने के लिए घर से बाहर चले जाते हो तो लौट के सबसे पहले क्या करते हो, हैं? क्या करते हो लौट के, आगे सो जाते हो, सबसे पहले घर की सफाई करते हैं, जो अस्त व्यस्त हो गया घर उसको आप क्या करते हो, हाँ, सुव्यवस्थित करते हो, करते हो कि नहीं करते हो, तब आपको आराम से क्या आती है, नींद आती है ना। तो वैसे ही जब ये चक्र महाराज पूर्णतया सुव्यवस्थित हो जाता है तो आपका जो ये सामान्य जीवन है ये भी सुव्यवस्थित हो जाता है। और जब ये नदी जो है ना कर्म नदी जब पार हो जाती है तब महाराज अंत में क्या मिलता है, फिर उपासना। और उपासना के बाद, क्योंकि उसके पहले आप उपासना करने में सक्षम ही नहीं हो पाएंगे, और उपासना नहीं होगी तो ज्ञान बिल्कुल भी संभव नहीं। भूल जाओ महाराज कि ज्ञानवान हो जाएगा, कुछ नहीं होगा महाराज। तो पहले ये जो चक्र है इसको पूरा करना आवश्यक है। जो हम लोग बाहर से पढ़ते हैं हमारे यहाँ ग्रंथों में महाराज, पर्यावरण की सुरक्षा, कर्म की सुरक्षा, कर्म का जो विधान है भगवान ने गोवर्धन पर्वत के द्वारा, कि कितना भी प्रयत्न करना पड़े जो संकल्प तुमने ले लिया है उस संकल्प से तुम कभी पीछे नहीं हटो महाराज। और भगवान ने उसके लिए क्या किया, गोवर्धन पर्वत को उठाया और गिरधारी कहलाए। तो इस प्रकार से ये गोवर्धन लीला है। और एक मास का समय था, उसमें चार दिन की छुट्टी हो गई है, तो इसलिए विचार तो यही था कि कंस को मार दिया जाता, लेकिन कंस का प्रारब्ध है ना कि एक साल के लिए उसकी आयु क्या हो गई, बढ़ गई है ना। तो चार दिन मिलते तो अभी कंस वंश मार 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 दिया जाता है, हो जाती छुट्टी बिचारे की। लेकिन अब उसको भी एक साल का क्या मिल गया, चार दिन की छुट्टी में एक साल बढ़ गया उसका कंस का। तो भगवान से आप लोग प्रार्थना कीजिए कि उस कंस को मारने के लिए मैं एक साल तक जिंदा रहूं, है ना। अवत वक्तारम कहते हैं ना, अवत वक्तारम, हमारे वक्ता की क्या करो। हाँ, तो आप लोग ये मंत्र जपते रहे तो अगले साल कंस को जरूर मारेंगे, और ऐसा मारेंगे कि कंस भी कहे उठेगा कि इससे बढ़िया तो द्वापर था, ये कलयुग बड़ा खतरनाक है, है ना। ऐसा जोरदार मारेंगे महाराज, है ना। तो कंस ऐसा भगवान ने भी नहीं मारा जो हम आप मारेंगे, लेकिन अगले साल एक साल जो है उसको एक हैप्पी बर्थडे क्या करने दो, एक और मना लेने दो, है ना। तो फिर अगले वर्ष कल अंतिम दिन है, एक छोटी सी भगवान की एक और लीला है उसका भी चिंतन करते हुए जो है कल उपसंहार, फिर जैसा आगे भगवान की मर्जी। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।